संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 15 अप्रैल 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के लोगों पर भी, युद्ध तुरंत रोके जाने की पुकार। इस बीच बहुत से यूक्रेनी लोग वापिस लौट रहे हैं स्वदेश। यौन हिंसा का एक हथियार के रूप में प्रयोग रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की पुकार। WHO की चेतावनी, कोविड के मामलों में कमी के बावजूद महामारी का जोखिम अब भी बरकरार। और बुजुर्गों के अधिकार सुनिश्चित किए जाने की अहमियत पर जोर। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने दुनिया के बेहद कमजोर हालात वाले लोगों पर यूक्रेन युद्ध के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए गठित खाद्य, ऊर्जा और वित्त पर वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह GCRG का पॉलिसी ब्रीफ जारी किया है। उन्होंने इसमें रेखांकित किया कि वैसे तो ज्यादा ध्यान यूक्रेनियों पर इस युद्ध के असर पर है, मगर इसका वैश्विक प्रभाव भी हो रहा है। एक ऐसी दुनिया में जो पहले ही निर्धनता, भुखमरी और सामाजिक अशांति का सामना कर रही है, उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय एक ऐसे सटीक तूफान का सामना कर रही है जिसने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तबाही का जोखिम उत्पन्न कर दिया है।
This war must end. The people of Ukraine cannot bear the violence being inflicted on them and the most vulnerable people around the world.
अंतोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि ये युद्ध खत्म होना होगा। यूक्रेन के लोगों पर हो रही हिंसा बर्दाश्त के बाहर है और दुनिया भर में रहने वाले बेहद कमजोर हालात वाले लोगों को भी एक और मानवीय त्रासदी का असहाय शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ दिया जा सकता, जबकि उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। UN प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। एजेंसियों का कहना है कि यूक्रेन संकट ने दुनिया की लगभग 20% आबादी यानी करीब 1.7 अरब लोगों को निर्धनता, तकलीफों और भुखमरी में धकेलने का जोखिम उत्पन्न कर दिया है। इस बीच यूएन एजेंसियों के अनुसार यूक्रेन पर रूसी महासंघ के हमले के बाद जो लोग सुरक्षा की खातिर देश छोड़कर विदेशों में चले गए थे, उनमें से कुछ लोग अब स्वदेश वापस लौटने लगे हैं। एजेंसियों के अनुसार औसतन लगभग 30,000 लोग प्रतिदिन यूक्रेन वापस लौट रहे हैं और अभी तक करीब 8,70,000 लोग वापस लौट चुके हैं। संघर्षों की स्थितियों में यौन हिंसा पर यूएन महासचिव की विशेष प्रतिनिधि प्रमिला पैटन ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में कहा कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं और युद्ध व शांति के समय में भी समान रूप से सार्वभौमिक हैं। उन्होंने संघर्ष व युद्ध संबंधी यौन हिंसा के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने का आग्रह भी किया। प्रमिला पैटन युद्ध में बलात्कार का एक हथियार के रूप में प्रयोग रोकने के लिए काम कर रही हैं। प्रमिला पैटन ने याद दिलाते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद ने महिलाओं, शांति व सुरक्षा पर 10 प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें से 5 प्रस्ताव संघर्षों संबंधी यौन हिंसा की रोकथाम और उससे निपटने पर केंद्रित हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता नादिया मुराद ने भी इस अवसर पर सुरक्षा परिषद में कहा कि न्याय सुनिश्चित करना जवाबदेही का सबसे ज्यादा नजर आने वाला रूप है। नादिया मुराद संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स व अपराध निरोधक कार्यालय UNODC की सद्भावना दूत भी हैं। सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान नादिया मुराद ने युद्ध में बलात्कार के सबूत एकत्र करने के लिए एक नई पहल की भी घोषणा की। इसका नाम मुराद कोड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि विश्व भर में कोविड-19 संक्रमण मामलों और मृतक संख्या में आई कमी का अर्थ ये नहीं है कि वैश्विक महामारी का जोखिम कम हो गया है, इसलिए सतर्कता बरतना जारी रखना होगा। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडेनम गेब्रियसिस ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के कारण मृतक संख्या वैश्विक महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से अपने सबसे कम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही आगाह भी किया।
Some countries are still witnessing serious spikes in cases, which is putting pressure on hospitals.
महानिदेशक गेब्रेसिस कह रहे थे कि कुछ देशों में संक्रमण मामलों में गंभीर उछाल आया है, जिससे अस्पतालों पर बोझ पड़ा है। साथ ही रुझानों पर नजर रखने की क्षमता पर भी असर हुआ है। क्योंकि परीक्षणों में काफी हद तक कमी आ गई है। यूएन एजेंसी के प्रमुख ने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस के रूप और प्रकार में बदलाव का आना जारी है और इसे नजरअंदाज करने का जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता है और ऐसी संभावना के लिए भी तैयार रहना होगा कि वायरस में इतना बदलाव आ जाए कि वो मौजूदा प्रतिरोधी क्षमता को बेअसर कर दे। इसलिए नई वैक्सीन समेत कोविड 19 से निपटने के लिए बेहतर स्वास्थ्य उपायों में निरंतर निवेश करने पर बल दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट ने कहा है कि आज के समय में वृद्ध जन के बुनियादी अधिकारों की हिफाजत सुनिश्चित करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है, मगर मौजूदा कानूनी सुरक्षाएं बुजुर्गों को असल में अदृश्य बनाती हैं। मिशेल बाशलेट न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में सोमवार को आयु वृद्धि पर एक कार्यकारी समूह की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आज वृद्ध जन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत संरक्षण की आवश्यकता है ताकि वो अपने अधिकारों का पूर्ण आनंद उठा सकें, मगर वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे अब भी वृद्ध जन को अदृश्य बनाते हैं, जबकि उन ढांचों को किसी भेदभाव के बिना ही हर एक व्यक्ति को हिफाजत मुहैया करानी चाहिए। मिशेल बाशलेट ने कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना चाहेंगी जहां बुजुर्गों को हर स्थान पर एक गरिमापूर्ण जीवन और आर्थिक सुरक्षा के साथ जीवन जीने की गारंटी हो, एक ऐसी दुनिया जहां बुजुर्ग लोग अपना कामकाज जारी रख सकें और अपनी इच्छा व सामर्थ्य अनुसार समाज में अपना योगदान कर सकें, जहां वो स्वतंत्र तरीके से जीवन जी सकें और अपने खुद के निर्णय ले सकें। संयुक्त राष्ट्र की हाल ही में जारी एक महत्वपूर्ण जलवायु रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि वर्ष 2010 से 2019 की अवधि में हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का स्तर मानव इतिहास में सबसे उच्च रहा है और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि बहुत से विकासशील और कम विकसित देश ऐसे हैं जिनका जलवायु परिवर्तन में तो योगदान बहुत कम है, मगर वो इसके व्यापक प्रभावों का सामना कर रहे हैं। अंशु शर्मा की एक रिपोर्ट।
विश्व प्रदूषण में यूरोप या अमेरिका जैसे अन्य महाद्वीपों की तुलना में अलबत्ता अफ्रीका का बहुत कम योगदान है, फिर भी इस महाद्वीप को जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर झेलना पड़ रहा है। इससे विभिन्न इलाकों में लगातार सूखा या बाढ़ की समस्या के कारण खाद्य सुरक्षा और कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव और अफ्रीकी जोखिम क्षमता क्लस्टर के महानिदेशक इब्राहिमा चेक डियोंका अफ्रीका के समक्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों पर कहना है,
मुझे खुशी है कि कॉप 26 में जलवायु परिवर्तन से अफ्रीका को हो रहे नुकसान को स्वीकार किया गया और उस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत को समझा गया, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि अफ्रीका को जलवायु परिवर्तन से और ज्यादा हानि ना हो।
अफ्रीकी जोखिम क्षमता क्लस्टर के महानिदेशक इब्राहिमा चेक डियोंग के शब्द। जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय चुनौतियों के संबंध में उनका कहना है,
अफ्रीकी देशों के लिए सबसे अहम है सक्रिय पूर्वानुमान, जिससे मौसम में बदलाव की जानकारी पहले से मिल सके और वो इसके लिए तैयारी कर सके। दूसरे, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों की अहमियत, जिससे नीति निर्माता जलवायु के खतरों से निपटने के लिए कार्रवाई कर सके। बहुत अहम ये भी है कि अफ्रीकी महाद्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं के संरक्षण हेतु अहम बदलाव किए जाए।
इब्राहिमा चेक डियोंग ने क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन में अफ्रीकी जोखिम क्षमता क्लस्टर की कार्य योजना स्पष्ट करते हुए कहा कि उन लोगों की आपबीती सामने लाना भी जरूरी है जो इस संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का मानवीय चेहरा लोगों को दिखाई दे सके।
ये आपबीतियां हमें न केवल बेहतर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, बल्कि ये समझने में भी मदद करेंगी कि जलवायु परिवर्तन के असर का दंश झेल रहे लोगों का मानवीय चेहरा दुनिया को नजर आ सके। और आज जब हम कॉप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो अफ्रीकी संदर्भ भी उसमें पूर्णतया शामिल हो।
इब्राहिमा चेक डियोंग का ये भी कहना था कि अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खासतौर पर यूएन महासचिव द्वारा घोषित 5 वर्षीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की भूमिका अहम होगी।
तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।